هم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی آنے میں, کچھ طرح سا ذاتی ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی, اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ دیر کے باوجود بھی تشریف فرما ہے. آج جس موضوع کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے, جو آپ سب جانتے ہی ہیں, وہ ہیپاٹائٹس. میں نے, اب اگر آپ میں سے کوئی یہاں تھے, اس سے پہلے گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اس وقت بہت سارے مسائل ہیں. دہشت گردی کا سامنا ہمیں ہے, بے روزگاری کا سامنا ہے, لائٹ کے مسائل ہیں, لوڈ شیڈنگ یعنی کہ, اور بہت سارے مسائل ہیں. تو ان سارے مسائل کی موجودگی میں ہم اس مسئلے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں, یا اس مسئلے پر کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیا اس مسئلے کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں, جو ہم مسجد جیسی مقدس جگہ پہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ معلوم تو آپ سب کو ہی ہے یقیناً, اخبار ہے, انٹرنیٹ ہے, ان سب سہولتوں سے یہ سب چیزیں معلوم تو ہم سب کو ہی ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اور مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی ہے وہ جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. ہمیں معلوم تو ہے لیکن ہم اس کو سوچنا ہی نہیں چاہتے, یا ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. تو آج کی اس گفتگو کا مقصد آپ کو کوئی نئی باتیں بتانا نہیں ہے, آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں, بلکہ آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے. تو مسئلہ ہے کیا؟ آپ اگر کسی بھی سرکاری اسپتال میں چلے جائیے, یا کسی پرائیویٹ اسپتال میں ایک وارڈ جس میں میڈیسن کے وارڈ مریض کے رکھے جاتے ہیں, میڈیسن سے مطلب پیٹ کے درد, سر کے درد, نزلے کھانسی کے مریض جن وارڈس میں ہوتے ہیں ان کو میڈیسن کے وارڈ ہمارے ٹیکنیکل ٹرم میں کہا جاتا ہے, وہاں آپ کو اکثر مریض دکھیں گے, پیٹ بڑا ہوا ہے, پیٹ میں پانی ہے, آنکھیں زرد ہوئی ہوئی ہیں یعنی کہ پیلیا ہے, اور جسم سوکھا ہوا ہے, بالکل بالکل جسم میں طاقت نہیں ہے. تو ایسے مریض عموماً, جو ایک لفظ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ان کو سیروسس ہو گیا ہے, یعنی کہ ان کا جگر سکڑ گیا ہے. سیروسس آف لیور یعنی کہ جگر کا سکڑ جانا, یہ وہ کنڈیشن ہے جو ریورسیبل نہیں ہے, یعنی کہ واپس نہیں ہوگی. اب ایک بار ہو گیا تو ہو گیا, ڈاکٹر کو یہ پتا ہے کہ یہ مریض نہیں بچے گا کچھ دنوں بعد, یعنی کہ یہ مریض کی کیفیت پہ ہے کہ کس اسٹیج پہ ہم بیماری کے, یعنی کہ لیکن یہ پتہ ہے کہ بیماری صحیح نہیں ہوگی. وہ علاج کس کا کر رہا ہے کہ اس بیماری کی کمپلیکیشن نہ ہو, اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈاکٹر کو پتہ یہ نہیں بچے گا, مریض کو پتہ ہوتا ہے وہ نہیں بچے گا, اور گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں بچے گا. اور ایسا شخص, معذرت کے ساتھ اگر کسی کے گھر میں ایسے کوئی مریض ہیں, تو ایسا شخص معاشرے کا ایک ناکارہ انسان ہوتا ہے, یعنی ہمارے اس معاشرے کے کسی کام کا نہیں ہوتا. ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ہاں پچھلے دنوں دہشت گردی سے تقریباً ایوریج 10 لوگ روزانہ مر رہے تھے, ایوریج یہی تھا, جو کہ بہت بڑا فگر ہے, اور ہم اس پہ پریشان بھی بہت ہیں. میڈیا بھی اس کو بہت کوریج دیتا ہے کہ 10 لوگ روزانہ دہشت گردی کے شکار ہو رہے تھے. لیکن اگر آپ حقائق کی طرف دیکھیں, اگر آپ اعداد و شمار کے حساب سے دیکھیں, اسٹیٹکس کے حساب سے دیکھیں, تو تقریباً 25 سے 26 لوگ روزانہ اس سیروسس کی وجہ سے مرتے ہیں پاکستان میں, پورے پاکستان میں روزانہ. یہ باقاعدہ ایک فگر ہے, اور یہ بہت بڑا فگر ہے. اس گفتگو, اس باتوں, ان باتوں کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے. ایک انٹرنیشنل جنرل, جو میڈیکل کے جنرل ہوتے ہیں, اس نے ایک لفظ استعمال کیا, پاکستان ا لیور فیلئر اسٹیٹ. पाकिस्तान के मुतालिक हर चीज़ में फेलियर का वर्ड आता जा रहा है। बहुत बदकिस्मती की बात है कि जी डिफॉल्टर हो रहे हैं, फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं हर, लेकिन अब एक और वर्ड आ रहा है पाकिस्तान लीवर फेलियर स्टेट, यानी कि पाकिस्तान वो मुमलिकत बनने जा रहा है अल्लाह ना करे कि जिसमें लीवर फेलियर वाले लोग रहते होंगे। इस वक्त एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक या एक पुराने एस्टिमेट के हिसाब से हर पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी का शिकार, हेपेटाइटिस सी का मतलब ये नहीं कि सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस सी एक वायरस है जिसका मैं भी बताता हूँ, जिस पर बात करते हैं, हेपेटाइटिस सी का शिकार तकरीबन 6 से 7% लोग हैं, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी खड़े करें, अगर आप पाकिस्तानी 100 पाकिस्तानी खड़े करें तो उनमें से हर छठे या सातवां आदमी हेपेटाइटिस सी का शिकार है, और अगर हेपेटाइटिस सी को इलाज ना किया जाए तो वो जिगर को ख़राब कर देता है, और 3.5% या रफली 4% हेपेटाइटिस बी का शिकार है, यानी कि अगर 100 पाकिस्तानी खड़े किए जाएं तो उनमें से हर तीसरा आदमी या हर चौथा आदमी हेपेटाइटिस बी का शिकार है। दुनिया के आदादोशुमार के हिसाब से ये बहुत बड़ा फिगर है। तो इस मसले पर, इस जगह पर, इस मुकद्दस जगह पर बात करने का मकसद ये कि एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम नज़रअंदाज किए हुए हैं। अब हेपेटाइटिस है क्या? हेपेटाइटिस का मतलब सिंपल, बहुत आसान अल्फाज में ये है, जिगर के खलियों पे या जिगर पे वर्म का आ जाना हेपेटाइटिस कहलाता है। हेपेटाइटिस की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें अगर आप यूरोप में देखें या अमेरिका में देखें तो शराब नोशी सबसे बड़ा मसला है। इसके बाद पाकिस्तान में देखें या तीसरे दुनिया के ममालिक में देखें तो वायरस सबसे बड़ा मसला है। वायरस हेपेटाइटिस कराते हैं, इसके अलावा कुछ दवाएं अगर ज़्यादा मकदार में ले ली जाएं तो वो हेपेटाइटिस कराती हैं, इसके अलावा कुछ टॉक्सिन या कुछ ऐसे केमिकल जो गलती से इंसान के जिस्म में चले जाएं हादसाती तौर पे, वो हेपेटाइटिस कराते हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जैसे कॉपर की ज़्यादती, आयरन की ज़्यादती, और इंसान के जिस्म के दिफाई निज़ाम का इंसान के ख़िलाफ़ काम करना, जिसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं, और इसके अलावा चंद एक और हैं जो कि बहुत कम मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मौजूद हैं हमारे मुल्कों में या हमारे मुल्क में वो है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस का मतलब क्या है कि वायरस आपके या हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हों और हमारे जिगर पे काम करें, हमारे जिगर पे हमला करें, तो ये कहलाता है वायरल हेपेटाइटिस। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले हों। अच्छा, गुफ्तगू थोड़ी सी खुश्क है तो मैं बहुत माजरत खा हूँ, क्योंकि मौजू ही कुछ ऐसा है, आपकी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब वायरल हेपेटाइटिस मुख्तलिफ वायरस कराते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस, और इसके अलावा भी कुछ वायरस हैं जो कि इतने कॉमन नहीं हैं। यहाँ ये तस्वीर ज़रूर कर दूँ कि हमारे जहनों में एक चीज़ आ जाती है, जी हेपेटाइटिस ए वायरस अगर ख़राब हो जाए तो वो बी बन जाता है, बी ख़राब हो जाए तो वो सी बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेपेटाइटिस ए एक बिल्कुल अलग वायरस है, हेपेटाइटिस बी एक बिल्कुल अलग वायरस है, हेपेटाइटिस सी एक बिल्कुल अलग वायरस है, डी और ई बिल्कुल अलग वायरस है। ऐसा नहीं होता कि एक वायरस ख़राब हो गया ए से बी बन जाए, बी से सी बन जाए, सी से डी बन जाए, ये तो गलत फहमी है बहुत पहली भी, इसको बिल्कुल अपने जहनों में क्लियर कर लें। हेपेटाइटिस ए जो वायरस, हम बात करेंगे वैसे तो बहुत डिटेल है क्योंकि वक्त भी कम है और बहुत लंबी गुफ्तगू का कोई फ़ायदा भी नहीं, हम बात करेंगे कि ये मर्ज फैलते किस तरह से हैं, बचाव कैसे मुमकिन है और इलाज क्या है। हेपेटाइटिस ए वायरस मुंह के ज़रिए से इंसान के जिस्म में जाता है, और फैलता किस तरह से है, ये इस तरह से फैलता है कि एक इंसान अपने फजले में इस वायरस को खारिज करता है, और वो फजला अगर हमारे खाने पीने की चीज़ों से मिल रहा है तो, या वो पानी जिसमें फजला आके गिर रहा है और वो पानी हमारे जिस्म के अंदर जा रहा है, तो हेपेटाइटिस ए फैलने के चांसेस हैं। मिसाल मैं आपको दूं कि एक हॉस्टल में तमाम बच्चों को हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया जब उन्होंने तहकीकात करी, इस पर इन्वेस्टिगेट किया, तो मालूम ये हुआ कि जो खाना पकाता था कुक बावर्ची, वो वॉशरूम से आके हाथ नहीं धोता था, और उन्हीं हाथों से वो खाना पकाता था, और इससे वो उसने पूरे हॉस्ट उसको ख़ुद हेपेटाइटिस ए था, और उसने तमाम बच्चों को हेपेटाइटिस ए हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत कॉमन सी चीज़ है बदकिस्मती से, कि पीने का पानी और गटर लाइन आपस में मिल जाते हैं अक्सर, इससे हेपेटाइटिस ए फैलने का बहुत ज़्यादा चांस है और फैलता है। इसी तरह ठेलों पे और ऐसी जगह पे जहाँ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, पकाने वाले, सफाई करने वाले या खाना निकाल के देने वाले जो खाने को हाथ लगाते हैं, वो हाथ नहीं धोते और उनको ख़ुद को जरासीम है और वो हाथ धोने के आदि नहीं है, सफाई का ख्याल नहीं करते, तो हेपेटाइटिस ए फैलता है। है तो ये वायरस। अच्छा, हेपेटाइटिस की अलामत क्या होती हैं, चाहे वो किसी भी वायरस से हो या किसी भी चीज़ से हेपेटाइटिस हो, तो उसकी अलामत क्या हैं? पीलिया हो जाना, मैदे में दर्द रहना, पेट के ऊपर वाले हिस्से पे दर्द रहना, भारीपन रहना, कुछ लोगों को उल्टियाँ भी आती हैं, कुछ लोगों को उल्टी जैसी कैफियत हर वक्त महसूस होती है, और भूख का ना लगना, ये बुनियादी अलामत हैं। किसी, ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ में सारी अलामत मौजूद हों, किसी में उल्टी ज़्यादा होती है, किसी में पीलिया ज़्यादा होता है, किसी में दर्द ज़्यादा होता है। तो हेपेटाइटिस ए का मरीज़ उमूमन बच्चों में कॉमन होता है, यानी कि अगर आप देखें तो 15 से 18 साल की उम्र में ये ज़्यादा कॉमन होता है। और इसका इलाज क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, परेशान मत होइए कि इसका कोई इलाज नहीं है। खुशकिस्मती से अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा है कि हमारा जिस्म उसको ख़ुद ब खुद ख़त्म कर देता है, यानी इसको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही हज़ार में से कोई एक केस होगा जो ख़राब हो, अदरवाइज सारे जो हैं वो ख़ुद ब खुद सही हो जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर ये करते हैं, कुछ ऐसी दवाएं देंगे कि मुंह का मज़ा सही रहे, ड्रिप लगा के पानी की कमी को पूरा कर देते हैं, और उल्टी और मछली की दवा दे देते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए का कोई इलाज नहीं है। हेपेटाइटिस ए ख़ुद ब खुद सही हो जाता है, और खुशकिस्मती ये भी है कि ये दोबारा नहीं होता, अगर एक मरतबा हो गया ज़िंदगी में दोबारा नहीं होता। अच्छा, बचें कैसे इससे? इससे बचने का सिंपल बहुत बुनियादी उसूल है कि इस्लाम के बुनियादी उसूलों का ख्याल रखें, कि हम सफाई का ख्याल रखें। पानी, अगर हमें शक होता है कि हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है, तो पानी को उबाल के पिएं, या वैसे भी पानी को उबाल के ही पीना चाहिए। इसके अलावा ऐसी जगहों पर खाने पीने से परहेज़ करें, बच्चों को भी समझा दें जहाँ पर गंदगी का शायबा है, जहाँ पर आपको है शक के यहाँ पर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। दूसरी एक चीज़ वो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। वो वैक्सीन उन लोगों को ज़रूरत नहीं है जिनको पहले हो चुका है या जो बड़ी उम्र के हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे मौजूदा निज़ाम में हेपेटाइटिस ए होता ज़रूर है अक्सर लोगों को, ज़रूरी नहीं कि सामने आ जाए, और वो ख़ुद ही ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन अब जो नई वैक्सीन आई हैं, बच्चों की वैक्सीन की रिकमेंडेशन आई हैं, उसमें हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी शामिल है और लग रही है लोगों को। तो अगर बच्चे घर में छोटे हैं, वैक्सीनेशन हो रही है, तो उनको हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये हेपेटाइटिस ए बुनियादी उसूल सफाई का ख्याल रखें तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद इन वायरसेस पे बात करना है। ये दोनों वायरस एक ही तरह से इंसान के जिस्म पे हमला करते हैं, एक ही तरह से हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, और एक ही तरह से फैलते हैं, लेकिन इनका इलाज मुख्तलिफ है। हेपेटाइटिस बी वायरस और ए सी वायरस बिल्कुल अलग अलग वायरस हैं। इनकी साख्त, इनकी माइक्रोबायोलॉजी, उससे जाहिर सी बात है आपके शोभा नहीं, आपको उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत या सोचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं वैसे बता दूं कि इनकी माइक्रोबायोलॉजी, इनकी साख्त बिल्कुल अलग है, लेकिन इनके फैलने का तरीका एक है। ये किस तरह से फैलते हैं, ये सब इनके फैलने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। ये खून के ज़रिए से फैलते हैं, यानी कि अगर एक मरीज़ है, उसको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, और उसका खून बग़ैर चेक किए किसी मरीज़ को चढ़ा दिया जाए, उसको लगा दिया जाए, तो हेपेटाइटिस बी और सी फैलने का ख़तरा है। अच्छा, इसके फैलने के तरीके से पहले हम ये बात कर लें जो बहुत अहम है, कि इसकी हेपेटाइटिस सी और बी की जिगर पे जो हमला करते हैं, जिगर पे जो ये काम करते हैं, उसके मुख्तलिफ स्टेज हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं, अक्सर मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके जिस्म में वायरस होता तो है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता, आम इस्तलाह में उसको आप ये कह दें कि वो सो रहा होता है जिगर के अंदर या हमारे खून में, यानी कि मरीज़ को ख़ुद नहीं मालूम होता कि उसको हेपेटाइटिस सी या बी है, उसके जिस्म में मालूम होता है। अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे हमारे यहाँ आते हैं ओपीडी में क्लिनिक पे, जो ये कहते हैं कि जी हमें तो खून दिया हमने किसी को तो हमें मालूम हुआ, या हम कहीं ऐसे टेस्ट कराने गए तो उन्होंने हेपेटाइटिस बी और सी चेक कर लिया तो वहाँ पर मालूम हुआ कि हेपेटाइटिस बी एस सी निकल आया। यानी अक्सर मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको कोई अलामत नहीं आती, जरासीम उनमें सोता रहता है। जब जरासीम की मखसूस मकदार होती है, जरासीम एक्टिव होता है या इंसान के जिस्म के दिफाई निज़ाम कुछ उसके ख़िलाफ़ काम करता है, तब हमारे अलामत आती हैं, मतलब वही पीलिया होना, पेट में दर्द होना, उल्टी का महसूस होना और भूख का ना लगना। तो इस बात को जहन में रखिएगा। तो अब अगर ऐसे मरीज़ का जिसको हेपेटाइटिस बी एस सी उसके जिस्म में मौजूद है, वो एक्टिव है या सो रहा है, दोनों सूरतों में बी एस सी मौजूद हैं, एक्टिव हैं या सो रहे हैं, उसका खून बग़ैर चेक करें किसी ऐसे इंसान को चढ़ा दिया जाए जिसको नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी और सी होने का ख़तरा मौजूद है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर ऐसे आलात इस्तेमाल किए जाएँ, मसलन मुझे एक हेपेटाइटिस बी या सी मौजूद है मसलन, और मेरे एक इंजेक्शन लगा और वही सिरिंज उठा के दूसरे मरीज़ के लगा दी गई, तो हेपेटाइटिस बी और सी फैलने का ख़तरा मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अगर शोहर को है हेपेटाइटिस बी या सी या बीवी को है, तो एक दूसरे को लगने का ख़तरा मौजूद है। अगर हामला माँ को हेपेटाइटिस बी या सी है तो बच्चे को लगने का ख़तरा मौजूद है। इसी तरह अगर आप ऐसी जगह से ऑपरेशन कराते हैं जहाँ पर आलात की सफाई नहीं की जाती सही तरीके से और आलात दोबारा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हेपेटाइटिस बी या सी फैलने का ख़तरा मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप हज्जाम की दुकान पर जाते हैं और हज्जाम उस तरह का ब्लेड चेंज नहीं करता और उस पर उसी ऐसे मरीज़ से खून लग गया जिसको हेपेटाइटिस बी या सी मौजूद है और उसने उसी उस तरह से किसी और का शेप बना दिया और उसको कट लग गया, तो ख़तरा मौजूद है। इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हेपेटाइटिस बी या सी फैलने के ख़तरे जो हैं उसकी शरह मुख्तलिफ़ है, यानी कि फ़ीसद अलग अलग है, लेकिन ख़तरा मौजूद है। इसी तरह आप कहीं ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं किसी गैर मयारी लेबॉरटरी में, उसने एक सिरिंज से किसी का ब्लड ड्रॉ किया, उसको टेस्ट किया, उसी सिरिंज से आपका ब्लड ड्रॉ कर लिया, तो ख़तरा मौजूद है। इसी तरह ख़वातीन जो ब्यूटी पार्लर्स में जाती हैं, और वो कुछ मैंने ख़ुद तो मुझे तजुर्बा पूरा नहीं क्या चीज़ होती है, लेकिन मैंने पढ़ा ज़रूर है कि मैनीक्योर पेडिक्योर जो होता है उसमें कुछ आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे हेपेटाइटिस बी या सी फैलने का ख़तरा मौजूद है अगर वो सफाई सही नहीं की जाती। पाँचवीं जी आखिरी चीज़ कि अगर कोई ऐसी इलाज करवाता है, मसलन एक इलाज चला था एक्यूपंचर जिसमें सुइयाँ चुभोई जाती थी मरीज़ों के दर्द दूर करने के लिए, अगर वो सुइयाँ दोबारा इस्तेमाल की जाती हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी फैलने का ख़तरा मौजूद है। अब अगर जी सारे ख़तरे मौजूद हैं तो इनसे बचा कैसे जाए? इनसे बचने का बहुत सिंपल सा हल है, बहुत आसान, कि हमें अपने जहन में इस ख़तरे को, इस मामले को रखना होगा। क्योंकि अक्सर मैं आपसे अर्ज़ किया कि हमें मालूम होता है लेकिन हम भूल जाते हैं, हम उसको तवज्जो दे नहीं रहे होते हैं, या हम अपने सोशल प्रेशर माशरती दबाव की वजह से चुप हो जाते हैं। मसलन आप किसी हज्जाम की दुकान पर बैठे हैं, आपके सामने वो किसी और का शेप बनाने खड़ा हुआ और उसने ब्लेड चेंज नहीं किया, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हमारे मसले माजरत के साथ कोई सुपरमैन आके हल नहीं करेगा, हमें खुद हल कर रहे हैं, और ये वाले मसले तो कोई भी हल नहीं कर सकता बाहर से आके। अगर आपके सामने एक हज्जाम उस तरह से शेप बना रहा है और ब्लेड चेंज नहीं कर रहा, तो मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको रोकें। इसमें हमारे ताल्लुकात ख़राब होने का ख़तरा है, इसमें हमारे उससे हम कहेंगे हम क्यों बोले, हमारा मामला ही नहीं है। लेकिन कल आपके बच्चे का भी शेप बना सकता है, ख़त बना सकता है, कल आपको अपना ख़त बना सकता है, उसी में वो ब्लेड इस्तेमाल करेगा। अगर एक दफ़ा आपने टोक दिया तो वो हमेशा इस बात को जहन में रखेगा। दूसरी चीज़, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं आपको खून की ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा किसी मयारी ब्लड बैंक से लें, इस बात पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत ही कम हालात ऐसे होते हैं जिनमें खून की अशद ज़रूरत होती है, ज़्यादातर खून चढ़ता है आराम से, यानी कि कोई जल्दी नहीं होती, तो ऐसा ना करें जल्दी की वजह से आप किसी गैर मयारी ब्लड बैंक से खून ख़रीद लें। और ये मैं बात ये वाजे करता चलूँ कि ख़रीदना खून, जहाँ से खून ख़रीदा जाता है बग़ैर डोनर के, अक्सर ब्लड बैंक वही हैं जहाँ पर खून उन लोगों से लिया जाता है जो नशा करते हैं। नशे वाले लोग अपना खून बेचते हैं, उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं, और जो लोग नशा करते हैं वो नशा, सिरिंज का नशा बहुत कॉमन है, यानी कि 20 लोग बैठते हैं और एक ही निडल से अपने अपने नशे की दवा लगाते हैं, यानी कि उनमें हेपेटाइटिस बी सी और HIV जिससे एड्स हो जाती है, वो वायरस होने के ख़तरे बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो मयारी ब्लड बैंक से ब्लड लें हमेशा, इसलिए नहीं कि आपको डोनर नहीं देना पड़ेगा, आपको कुछ 2000 रुपये ऊपर दे के ब्लड मिल जाएगा, कभी ना लें। दूसरी चीज़, जहाँ भी कहीं ब्लड देने जाएँ या कोई इंजेक्शन लगवाएं क्लिनिक पर, तो इस बात को मेक श्योर करें, इस बात को लाजमी करें कि आपके सामने सिरिंज नहीं खोली जाए, वरना ना लगवाइए। चौथी चीज़, आप कहीं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाएं, सिरिंज अपने सामने खुलवाइए। किसी जगह कहीं ऑपरेशन होता है तो उस हॉस्पिटल का मयार मालूम कर लीजिए कि यहाँ पर सारे आलात इस्तेमाल कैसे होते हैं। सर्जरी में होने वाले सारे आलात दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आलात जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर उनको एक ख़ास किस्म के सोल्यूशन में धोया जाता है या रखा जाता है, जो कि बहुत महंगा है और सिर्फ हॉस्पिटल में होता है, बड़े हॉस्पिटल में। पानी में, गर्म पानी में बॉयल करने से कभी भी ये जरासीम नहीं मरते। जो एक कॉन्सेप्ट है जो पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था कि सिरिंज को गर्म पानी में उबाल लेते थे, तो गर्म पानी में उबाल लेने से बैक्टीरिया तो मर जाते हैं लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस नहीं मरते। तो अगर कोई डॉक्टर ये प्रैक्टिस कर रहा है या कोई डेंटिस्ट, खासकर डेंटिस्ट ये करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर हैं नहीं, हमारे माशरे में इस तरह के लोग बहुत बैठे हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें बहुत कर रहे हैं कि चीज़ें रीयूज़ करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि हम पानी में इसको गर्म कर रहे थे, इसको उबाल लेते हैं। ख़वातीन को मशवरा दें कि जब अगर ब्यूटी पार्लर जाएँ कि जो इस तरह के प्रोसीजर है तो उसमें एहतियात करें, अपने सामने देखें, हर चीज़ नहीं खुलवाएं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है। अगर माँ हामला है और आपको मालूम होता है किसी को कि जो माँ हामला है उसको हेपेटाइटिस बी या सी मौजूद है, तो डॉक्टर से रابطہ करें ताकि प्लानिंग हो, जब बच्चा होगा उसको एक ख़ास किस्म के इंजेक्शन लगेंगे और फिर माँ का इलाज के बारे में सोचा जाए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है, हेपेटाइटिस बी से बचने की वैक्सीन मार्केट में मौजूद है, वो लगवा लीजिए। जहाँ तक मेरी मालूमात के हिसाब से सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं उनमें हेपेटाइटिस बी की वायरस की वैक्सीन बग़ैर किसी मुआवजे के लगाई जा रही है, तो या तो वो लगवा लीजिए या फिर ख़रीद के लगवा लीजिए हेपेटाइटिस बी और बी की वैक्सीन। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, इस बात को जहन में रखिए, क्योंकि लोग अक्सर कुछ जगहों पर बेवकूफ़ बना के लोगों को हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन लगा देते हैं। अभी तक दुनिया में हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं आई है। ये हमने बचने के तमाम तरीके कर लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, खून हमेशा मयारी ब्लड बैंक से लें, इंजेक्शन हमेशा अपने सामने नई सिरिंज खुलवाएँ, सर्जिकल आलात जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो अपने सामने देखें कि वो नए खुल रहे हैं या नहीं। हम सवालात पे आते हैं, आखिर में सवालात भी लेंगे। अपने सामने कोई चीज़ रीयूज होते हुए ना देखें तो उसको फ़ौरन रोक दें। कोई ऐसी चीज़ जिसमें दोबारा निडल जो डायरेक्ट आपके बॉडी कॉन्टैक्ट में आ रही है वो इस्तेमाल हो रही है तो उसको फ़ौरन तस्वीर करें। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लें, और अगर अल्लाह ना करे किसी को हेपेटाइटिस बी ऐसी हो जाता है तो इतना परेशान ना हो कि इसका इलाज मौजूद नहीं है। इसका इलाज मौजूद है, हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज मौजूद है, लेकिन महंगा है। दोनों इलाज में मसला क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात महंगा है, इसके टेस्ट महंगे हैं, अगर आप किसी प्राइवेट लेबॉरेटरी से कराएंगे तो महंगे हैं। दूसरी बात, इलाज 100% कामयाब नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक मरीज़ को इलाज हुआ, हर एक का इलाज कामयाब हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ मरीज़ों पर इलाज कामयाब होता है, कुछ पे इलाज कामयाब नहीं हो पाता, उनको वो जरासीम पर दवा असर नहीं करती, लेकिन बहरहाल इलाज मौजूद है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है तो ये ना करें कि उसको बस छोड़ दें कि अब तो इसका कोई इलाज नहीं, ऐसा नहीं है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका इलाज करवाएं, इलाज मौजूद है। एक और चीज़ जो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर हेपेटाइटिस बी या सी किसी को है तो उसके साथ बैठने में, उसके साथ बातें करने में, उससे हाथ मिलाने में, उसके साथ खाना खाने में, या उसका चादर इस्तेमाल करने में, या उसके कपड़े इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस बी या सी नहीं फैलता। हाँ, कंघा ज़रूर अलग रखें, क्योंकि कंघा अगर करते हैं तो उसमें खून लगने का एक अंदेशा मौजूद है कि उसके सर में ज़ख्म है, खून लगा, तो कंघे हमेशा अलग रखें। कोशिश करें तौलिया हमेशा अलग रखें, इन चीज़ों का परहेज़ करें, और टूथब्रश ज़रूर अलग रखें। मैं एक दिलचस्प बात बताऊँ आपको कि एक पूरी फैमिली को, फेल ऑफ फैमिली थी, उनकी पूरी फैमिली को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया, वो सब परेशान हो गए, कैसा हुआ क्यों, ये मैंने कहीं पढ़ा था, इसकी अथेंटिसिटी या इसके रेफरेंस मेरे पास मौजूद नहीं है। तो जब मालूम हुआ तो कि उनकी जो घर में मासी थी वो जब वॉशरूम की सफाई करती थी बाथरूम की, तो हर एक के ब्रश से दांत मांजती थी और उसके मसूड़ों से खून आता था, उसको हेपेटाइटिस सी था। तो हर एक के ब्रश से दांत मांजती थी तो पता लगा पूरे घर को हेपेटाइटिस सी हो गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि टूथब्रश बिल्कुल हमेशा अलग हो, आपका कंघा बिल्कुल अलग हो। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब हमने हेपेटाइटिस बी और सी से बचने के बुनियादी तरीक़ों पे अमल करना होगा, और अगर हम इन बुनियादी तरीक़ों पे अमल करेंगे तो हम इलाज जैसी चीज़ से बच सकते हैं जो कि महंगी भी है और मुश्किल भी है लेकिन मौजूद है। अब हम एक बहुत अहम मसले पे बात कर लें जो कि मुहर्रम आने वाला है और इस मसले पे बात बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये मसला बहुत ज़रूरी है। वो मसला क्या है कि पिछले 20 सालों में, तकरीबन 20 से 25 सालों में मातमी कैंप लगते हैं, यानी मातम के बाद, जंजीरों के मातम के बाद टाँके लगाए जाते हैं मरीज़ों के, जो मातमदार होते हैं उनको टाँके लगाए जाते हैं। मैं ये तस्दीक ज़रूर कर दूँ कि हम मातम पे बात नहीं कर रहे, हम मातम के बाद होने वाले कैंप की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई गलत फहमी पैदा ना हो जाए कि हम मातम पे कोई बात नहीं कर रहे। मातम या शरई चीज़ों पर बात करना जिनकी फील्ड है वो बात करेंगे, हम बात करेंगे मातम के बाद जो मरीज़ों को या मातमदारों को टाँके लगाए जाते हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो 20 सालों में कैंप लगाए जाते हैं, बहुत अच्छा अमल है, हमारे यहाँ जज्बा भी है, हम करना भी चाहते हैं और हम कैंप लगाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन कैंपों पर बहुत ज़्यादा बेहतियाती हो रही होगी। यहाँ बैठ के, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड हो रही है, पूरी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन कैंपों में ख़ुद भी मौजूद रहा हूँ और होता भी हूँ अक्सर, मैं सब की बात नहीं कर रहा, अक्सर कैंपों पर किसी भी किस्म की कोई एहतियात नहीं की जा रही होती। एक ही निडल से सबको टाँके लग रहे होते हैं, अक्सर कैंपों की बात कर रहा हूँ, एक ही निडल से सबको टाँके लग रहे होते हैं। ज़ख़म को सुन करने के लिए जो इंजेक्शन लगता है जिसको लोकल कहा जाता है आम इस्तेलाह में, जो कि ज़ाइलोकेन का इंजेक्शन होता है, लोकल इंजेक्शन लगाते हैं, एक ही सिरिंज से 20 लोगों को लगाया जा रहा होता है। और अगर ऐसी जगह पर रोका जाए तो वहाँ माहौल ऐसा होता है कि रोका जाए, उमूमन डॉक्टर कम होते हैं वहाँ पर। अच्छा, डॉक्टर होते भी हैं क्योंकि ज़ाती तजुर्बा, इसलिए रोका जाए तो जवाब ये है, बहुत बहुत आम जवाब है ये, आप हर कैंप पे चंद आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डॉक्टर नहीं हैं और वो टाँके लगा रहे हो, तो बहुत अच्छे टाँके लगाते हैं, मैं इसकी भी मानता हूँ इस चीज़ को, बहुत अच्छे टाँके लगाते हैं, कि इतने अच्छे मैं नहीं लगा पाता, ये डॉक्टर नहीं लगा पा रहा होता, इतने अच्छे वो टाँके लगाते हैं। उनको जब रोका जाता है कि जी आप एक ही सुई ले कर सबको टाँके लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी आप खामोश ना, पिछले पता नहीं कितने साल से, 6 साल 8 साल से मैं टाँके लगा रहा हूँ और किसको हेपेटाइटिस हो गया। तो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज़, ज़रूरी नहीं कि उसको अलामत फ़ौरन आ जाएँ, हो सकता है 10 साल बाद आएँ, हो सकता है 5 साल बाद आएँ। मैं अगर मातम करके लेटा हूँ और मुझे हेपेटाइटिस बी या सी है तो मुझे खुद नहीं पता, मेरे वो सिरिंज लगी, मेरे वो निडल लगी, मेरे टाँके लगे और वही निडल उठा के दूसरे पे लगा दी, मतलब क्या हुआ? मतलब हमने जरासीम या वायरस को उधर से उधर ट्रांसफ़र करने में मदद कर दी। 100% शक, 100% ऐसा नहीं है कि निडल लगी तो हो ही जाएगा हेपेटाइटिस सी या बी, लेकिन चांस ज़रूर मौजूद है। ये भी मैं ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोग मातम करते हैं, मातम करने के बाद 90 से 95% ऐसे लोग हैं जिनके ज़ख़म खुद सही हो जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि जिन पर टाँका ना लगे तो वो ख़राब हो जाएंगे खुदा ना खास्ता। 1 या 2% ऐसे होते हैं जिन पर टाँका लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर नहीं लगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, वरना ब्लीडिंग इतनी नहीं होती। टाँका लगाने का मकसद क्या होता है? मकसद बहुत ही है कि ये खून रिश्ता रहेगा वो बंद हो जाए, हल्का हल्का जो रिश्ता रहता है। दूसरी चीज़ ये कि उसकी तहजीब से खून रिश्ता रहेगा तो वो नमाज़ नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हम इतना तो यकीन है हमारा, और 80 से 90% ऐसे मातमी हैं जो नमाज़ ज़रूर पढ़ते हैं। तो जब ये होता है कि जिनके खून रिश्ता रहेगा तो नमाज़ मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम टाँका लगा देते हैं। लेकिन टाँका इसलिए नहीं लगाते कि जी उसकी जान बचाना है। तो 90% से 80% ऐसे हैं जिनको टाँके की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन टाँका लगाते हैं हम सिर्फ इसलिए कि खून ना रिश्ता रहे, ये नमाज़ इसकी ख़राब ना हो, नमाज़ पढ़ता रहे, अपने ऑफिस जाता है तो शर्ट ख़राब ना हो। अगर हमने ऐसे इंसान को जिसको टाँके की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इन इन चीज़ों की वजह से टाँके लगा दिए और हमने अपनी गलती से हेपेटाइटिस बी या सी ट्रांसफ़र कर दिया, तो हुआ क्या? कि हमने उसको एक अच्छाई देने की ख्वाहिश में एक बुराई दे दी, उसकी मुस्तकबिल के लिए एक परेशानी का सामान दे दिया जो कि वो अगले हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भुगते, और इस दौरान में वो कितने लोगों को लगाता रहेगा उसको खुद भी नहीं पता होगा। इसका सबूत क्या है कि ये हो रहा है? जाहिर सी बात है वहाँ पर तस्वीरें खींचना या वहाँ पर पकड़ना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप जाके देख लीजिए जो हुसैनी ब्लड बैंक में हमारे अक्सर कितने नौजवानों का कोई रीज़न नहीं है, ना उधर कभी उनको ऑपरेशन हुआ है, ना उनको खून चढ़ा है। जब उनसे पूछा गया अचानक हेपेटाइटिस बी एस सी निकले जी, क्या टांके लगवाए थे हमने, एक रिस्क फैक्टर उसको कहते हैं जो कि डायरेक्टली साबित नहीं होता लेकिन एक ख़तरा होता है, तो एक बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद दिख रहा है ऐसा। यानी कि वो जगहें जहाँ पर हम शिफा देने के लिए, मदद करने के लिए बैठे हैं, या एक अंग्रेज़ी का वर्ड यूज़ करना चाहूँगा जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, वहाँ पर हम शिफा देने के बजाय बीमारी दे रहे हैं। अक्सर जगहों पर काफ़ी बेहतरी आना शुरू हुई है। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी खारादर के बहुत बड़ा कैंप लगता है वहाँ के जिम्मेदार थे, तो वो कह रहे हैं कि हमने पिछले 1-2-3 सालों में बहुत सख्ती कर दी है कि सिरिंज रीयूज ना हो, निडल रीयूज ना हो, लेकिन अभी भी इवन हस्पतालों में जो कैंप लग रहे हैं उनमें भी बेहतियाती हो रही है। और उस बेहतियाती की वजह क्या है? हमारी आँखें बंद कर लेना मसले की तरफ से। मसलन मैं वहाँ इसलिए नहीं बोलूँगा कि क्या मेरे को गिरेबान ना पकड़ ले, क्योंकि वहाँ जो माहौल होता है, वहाँ जो मजमा होता है, तो मजमे में बात करना ऐसी बिल्कुल इसी तरह है कि आपकी कोई बेइज्जती का ख़तरा ना हो जाए। हम सब अक्सर मसाइल में अपनी बेइज्जती और अपने ताल्लुकात की वजह से चुप हैं। अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें अपनी खामोशी तोड़ना होगी, हमें बोलना होगा। आप इस मस्जिद में हैं, इस इलाके में रहते हैं, आपके इलाके में, आपकी मस्जिद की सराउंडिंग में, आपके करीब कहीं कोई कैंप लगता है, तो हर एक की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि वहाँ जाके जहाँ जहाँ आप असरअंदाज हैं वहाँ जाके आप बोलें, वहाँ जाके इस बात को कन्फर्म करें कि वहाँ पर कोई चीज़ रीयूज़ तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो बोलें, उसको रोकें। इस इंतज़ार में नहीं रहें कि जी मैं क्यों बोलूँ। आप क्यों बोलें? इसलिए बोलें कि कल आपका बच्चा भी वहाँ लेट सकता है, आपका बच्चा भी मातम करके लेट सकता है, उसको वो टांका लग सकता है, रीयूज़ हो सकती है। तो अगर आप इस तरह से रीयूज़ करते रहेंगे, अल्लाह ना करे, तो हम अपने इन मातमी जवानों को मुस्तकबिल के लिए क्या दे रहे हैं, और फिर हमारा मुस्तकबिल का माशरा कैसा होगा, हमारी मुस्तकबिल की जनरेशन क्या होगी। तो आप जहाँ पर भी असरअंदाज हैं, जहाँ पर भी आप बोल सकते हैं, वहाँ पर आप बोलें, वहाँ पर आप रोकें, खामोशी को छोड़िए। आंखें बंद कर लेने से या मुंह बंद कर लेने से मसले हल नहीं होंगे। अगर आप असरअंदाज नहीं हैं, आपकी बात नहीं चलती, तो कम से कम आपका जो करीबी वहाँ लेटा है उसको वहाँ से उठाइए। अगर उसको टांकों की ज़रूरत है वाकई, तो कहीं पैसे देके लगवा लीजिए। उस जगह से ना लगवाएं जहाँ पे आपको दिख रहा है कि चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो रही हैं, गंदगी हो रही है, सफाई का ख्याल नहीं हो रहा। इस बात का ज़रूर ख्याल कर लीजिए। और सबसे अहम बात यह कि आप इस बात को बोलना शुरू करेंगे तो आपके जो इंतज़ामिया हैं वो इंतज़ामिया इस चीज़ पर तवज्जो देना शुरू करेगी। एक जगह पर मैंने एक ज़रूरत की, वहाँ बात की, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सिरिंजें निडलें दोबारा मंगवाएं, दोबारा हर एक पे नई इस्तेमाल करें। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि आप जो लोग मातम का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो लोग मजलिस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो इसका अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। सिर्फ आप उस तरफ तवज्जो दिला दें, वो इसका भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। जहाँ लोग लाखों रुपये मजलिस और मातम पर या तबर्रुक के लिए देते हैं, वहाँ लोग इसके लिए भी चंद हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका अरेंजमेंट लाजमी तौर पर कर लीजिए। और अगर आपकी नहीं चल रही वहाँ पर, तो आप अपने मरीज़ को उठाइए किसी और जगह से, पैसे दे के सामान नया ले के टाँके लगवा दीजिए। तो हम बुनियादी तौर पर हमें इन सब बातों को सोचना होगा, ख़ासकर मुहर्रम आ रहा है। अब हमारे यहाँ कैंप भी लगेंगे, मातम भी होगा, कैंप भी लगेंगे, तो इन चीज़ों का भरपूर तरीके से ख्याल रखिए। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सिरिन से, नीडल से और इन चीज़ों के रीयूज़ करने से हेपेटाइटिस बी एन सी और बी और सी फैल सकता है, बिल्कुल इसी तरह से जंजीरें एक्सचेंज ना करें। अपनी जंजीर अपनी रखिए, उसको एक्सचेंज ना करें। अपना मातम करिए, अपनी जंजीर अपने पास रखिए, जंजीर एक्सचेंज ना करें, जंजीर अपनी रखिए। कोई भी चीज़ रीयूज़ नहीं होनी चाहिए। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। कोई सवाल अगर आप चाहते हो तो देखिए, डेंटिस्ट के पास अगर आप जाते हैं और डेंटिस्ट बुनियादी चीज़ें जो डायरेक्ट आपके दांतों पे लगती हैं जिससे खून निकलने का ख़तरा है, तो उनको तो रीयूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कहते हैं ख़ास किस्म का सॉल्यूशन साइडेक्स कहलाता है, मुझे डेंटिस्ट के सामान के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो एंडोस्कोपी वगैरह होती है जिसमें मुँह से पाइप डाला जाता है, इसमें कैमरा होता है, एंडोस्कोप जिसे कहते हैं, उसको साइडेक्स में धोया जाता है। साइडेक्स एक बहुत महंगा सॉल्यूशन होता है जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता। जनरल ऑपरेशन में सारी चीज़ें रीयूज होती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो डायरेक्ट कांटेक्ट में, वो रीयूज नहीं हो सकती, उनको चेंज करना होगा। नहीं, उनके झूठे ग्लास में अगर उनके मुंह में कोई ज़ख़म है और वो ज़ख़म से उनका खून लग रहा है या कोई सिक्रेशन लग रही है और वो दूसरे इंसान के ज़ख़म या उस पर लग रही है, तो चांस ज़्यादा होता है। लोआब से है, बहुत कम चांस है, लेकिन है। और कोई बात अगर आप पूछ रहे हैं, इसमें बहुत कम चांस है ना होने के बराबर, लेकिन ये कि अगर उनका कोई ज़ख़म वगैरह लगता है तो चांस है, लेकिन कम चांस है। जी हाँ जी हाँ, इसमें तो यही कहा जाता है कि अगर आप अपनी सेहत के मुताबिक हैं, सिर्फ हेपेटाइटिस बी या सी नहीं, और भी चीज़ों में, तो अपना जुलूस में प्लास्टिक का ग्लास अलग लेके जाएँ। वो तो और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो सभी नहीं, कहीं पर भी आप पानी पियेंगे, किसी को कोई भी मर्ज़ लगने का चांस तो है, तो उसमें तो बेहतर है ग्लास अपना हो आपका। देखिए, फ़िल्टर में मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं पता, लेकिन जो हमने देखा है कि फ़िल्टर में आता है कि उसकी सफाई अगर टाइम पे नहीं होती तो उसमें जरासीम पलने का ख़तरा होता है, तो बेहतर है कि पानी बॉयल करके पिए, सबसे आसान तरीका यही है। बॉयल इतना कि उसमें उबाल आ जाए, नहीं इतना ज़्यादा नहीं होता, उबाल आ जाए तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। जी, और कोई सवाल? देखिए, इसके सिरोसिस के जो इब्तदाई मराहिल होते हैं, इसमें जिगर बढ़ जाता है, या हेपेटाइटिस, अगर हेपेटाइटिस है शुरू के स्टेज, हेपेटाइटिस है और सिरोसिस नहीं हुआ तो जिगर बढ़ता भी है, और सिरोसिस के इब्तदाई जो हालात होते हैं, ये इब्तदाई कंडीशन जो होती है उसमें जिगर बढ़ जाता है, फिर वो सिकुड़ जाता है। देखिए, उसमें, हाँ उसमें क्या, आप अपने डॉक्टर से जिसको इस इलाज करने की महारत है या वो जो इलाज करते हैं, तो उनको, उनसे आप रबते में रहें, वो आपको बताएंगे कब इलाज की ज़रूरत है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिससे फ़ैसला होता है कि इलाज की ज़रूरत है। अगर सो रहा है, LFT बिल्कुल नॉर्मल है, और कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि डिटेल में जाना बहुत टेक्निकल हो जाएगा, तो आप उस डॉक्टर से रबते में रहें, उसको दिखाते रहिए। जैसे कुछ डॉक्टर 3-3 महीने में बुलाते हैं, 6-6 महीने पर, उनसे रबते में रहें, वो फैसला करेगा डॉक्टर कि कब इसका इलाज शुरू करना है।
खास मिकदार में पहुंचने से जागते
हैं? नहीं, ख़ास मिकदार तो नहीं, असल में अब बहुत डिटेल बात हो जाएगी कि जिगर पे जो ये जरासीम आते हैं, तो ये जिगर पे जब ये आते हैं तो हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम इनके ख़िलाफ़ काम करता है। जब जिस्म का दिफाई निज़ाम ख़िलाफ़ इनके काम करता है, तो वो उसके साथ जिगर के जो खलिए इन पे भी असर होता है, उसकी वजह से सारी अलामत आती हैं। यानी कि जरासीम खुद जिगर को नहीं मारता, हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम उस वायरस के ख़िलाफ़ काम करता है, तो वायरस तो मरता नहीं, जिगर पे हमला हो जाता है, समझ लें, नतीजतन ही सारी अलामत सामने आती हैं, पीलिया होना, पेट में दर्द, उल्टी का होना, ये सब कुछ। मैंने आपको बताया ना, दोनों जरासीम एक ही तरह से फैलते हैं और दोनों जरासीम आपके जिगर पे ही हमला करते हैं, लेकिन इनके साख बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसमें एक बात हो आ गई, ये तो कर लेंगे। इसमें दो कंडीशन होती हैं, हेपेटाइटिस दो किस्म का होता है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है शदीद, क्रॉनिक का मतलब होता है स्लो। अगर एक्यूट है तो हेपेटाइटिस बी, अगर एक्यूट है तो 95% एक्यूट जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, यानी कि हमारा जिस्म ख़त्म कर देता है। लेकिन सी एक्यूट कम होता है और सी जो है वो क्रॉनिक में ज़्यादा होता है। सी खुद ब खुद ख़त्म होने का चांस बहुत ही कम है, जबकि बी अगर एक्यूट है तो उसके चांस 95% हैं। लेकिन अगर बी क्रॉनिक में चला जाए, क्रॉनिक से मतलब है कि वो स्लो प्रोसेस में आ जाए, और तो उसके भी चांस ख़त्म होने के बहुत कम है। जी बी की वैक्सीन 3 है, इसका है 0-1-6, यानी कि एक आप लगवाएंगे वैक्सीन अगली 1 महीने बाद, उसके बाद एक 6 महीने बाद, उसके बाद हर 5 साल बाद एक बूस्टर लगवा सकते हैं। अगर उमूमन बूस्टर उन लोगों को कहा जाता है जो लोग रिस्क पे होते हैं, मसलन डॉक्टर स्टाफ या ऐसे लोग जो उस मरीज़ों से रबते में हैं जिनको खुद हेपेटाइटिस बी या सी है, वरना बूस्टर हर 5 साल बाद लगवाने का कहा जाता है। लेकिन अगर आप 3 वैक्सीन भी लगवा लें और आप रिस्क पे नहीं हैं तो ये भी बहुत है। वैक्सीनेशन करवा ले, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब वैक्सीनेशन जिसको है और वैक्सीनेशन हो चुका है या है, हाँ, तो अब आपके जिस्म में तो एक दिफाई निज़ाम जनरेट हो गया हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़। अब आपके जिस्म में अगर आपको ख़त्म हो गया तो एक ख़ास टेस्ट होता है, उससे पता लगता है कि आपके जिस्म में एक दिफाई निज़ाम पैदा हो चुका है। अगर वो पैदा हो चुका है तो आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगवा लें तो कोई बुराई भी नहीं है, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। उसके दो तरीक़े हैं। उसका एक तरीक़ा तो ये है कि आप एक एंटी HBS टेस्ट होता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ आपके जिस्म में दिफाई निज़ाम पैदा हुआ या नहीं, और हुआ तो किस लेवल पे है, उसके टाइटर क्या है, टाइटर का मतलब है मकदार कितनी है। तो अगर वो एंटी HBS टेस्ट आपके पॉजिटिव आ रहा है और उसकी एक मकदार मौजूद है, अच्छी मकदार मौजूद है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। वरना अगर आपको शक है कि आपने लगवाई थी, कब लगवाई थी याद नहीं, तो अब एक बूस्टर डोज लगवा, लेकिन आपको ये याद है कि आपने पूरी डोज लगवाई थी तीनों 0-1-6, यानी कि 0-1 और 6 पहले महीना और 6 महीने पे आपको याद है आपने ये 3 लगवाई थी, बाद में कितना अर्सा पहले लगवाई थी, तो अब एक बूस्टर डोज लगवा लें तो आपका जिसम का दिफाई निज़ाम एक्टिवेट हो जाएगा। उमूमन जो एक्टिवेट नहीं होता वो मरीज़ होते हैं जो खुद जिनका दिफाई निज़ाम सो रहा होता है, यानी कमज़ोर होता है, मसलन जो मरीज़ डायलिसिस पे होते हैं या जिनका लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, वो ऐसी दवाओं पर हैं जो कि उनके जिस्म के दिफाई निज़ाम को सुला के रखती है, तो वो मरीज़ उनको वैक्सीन की और बार बार बूस्टर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है।
सब लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन जो नॉर्मल आती है?
जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन सब लगवा सकते हैं, बच्चे भी लगवा सकते हैं, बड़े बच्चों के तो अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन उनकी EPI यानी कि जो बच्चों के पैदाइश के बाद वैक्सीनेशन होती है उसमें शामिल हो चुकी है, लेकिन बड़े भी लगवा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, उनको फिर दोबारा लगवा लें, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के में इस वक्त जो मेरी मालूमात के हिसाब से वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वो जाके लगवा लीजिए बग़ैर किसी मुआवजे के है वो, और अगर आप खुद ख़रीद के लगवाना चाहते हैं तो वो भी कोई ख़ास महंगी नहीं है, ख़रीद के लगवा लीजिए। देखिए वो कुछ उसमें और टेस्ट भी होते हैं, ये काफ़ी ये टेक्निकल चीज़ होती है, लेकिन उमूमन इलाज नहीं होता। अगर इस तरह से आ जाए 2-2.5 साल बाद दोबारा देखा जाता है मरीज़ को पूरा, उसके LFT कैसे हैं, दोबारा DNA है या नहीं, वायरल लोड कितना है या नहीं, उसके बाद फैसला किया जाता है। नहीं कितने नहीं, इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकते, उसके ट्रीटमेंट बंद करने का टाइम ज़रा ज़्यादा होता है। जी इसकी हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट का फैसला एक तो डॉक्टर करते हैं, दूसरी बात ये कि ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी होती है, इसका फैसला मरीज़ को और उसके रिपोर्टें देख के किया जाता है। कुछ लोगों को 2 साल भी लगते हैं, कुछ को 4 साल, कुछ को ज़्यादा भी लग सकते हैं, और अगर जिगर पहले ही ख़राब है तो ज़िंदगी भर की दवा होती है। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। मैं आखिर में बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी देर ये खुश मौजू सुना और मुझे बर्दाश्त किया, और मेहंदी एजुकेशन सर्विसेज का भी कि उन्होंने इस अहम मौजू को इस काबिल समझा कि इसको मस्जिद में डिस्कस किया जा सके। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले।
المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر تیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com